तो इससे पता चलता है ना कि आखिरत का ईमान कितना जरूरी है। अब हम सोचते हैं कि अल्लाह पर ईमान कोई अगर ले आया तो आखिरत में ना भी लेकर आया तो कोई इतना मसला नहीं है। नहीं, आखिरत पर ईमान लाना इतना जरूरी है कि अगर कोई नहीं लेकर आया तो वो आखिरत में भी अजाब में और दुनिया में तो दूर की गुमराही में। इसलिए कि वो इंसान ना फिर वो जिंदगी गुजार ही नहीं कभी सकता जैसी अल्लाह को मतलूब है। जिसको यही नहीं है कि भाई आखिरत में जाकर कोई मेरी पूछगिछ होनी है, कोई मेरी पकड़ होनी है, कोई मैं मेरा हिसाब किताब होना, वो क्यों नेकी के रास्ते पर आएगा? वो क्यों अपनी जिंदगी वो कैद की जिंदगी गुजारेगा कि जिसके अंदर उसके ऊपर कोई पाबंदी हो, जिसके अंदर उसको खाने पीने की, उठने बैठने की, सोने जागने की, कोई पहनने ओढ़ने की, कोई तिजारत की, कोई मामलात की कोई पाबंदी हो, वो क्यों उसको बर्दाश्त करेगा? वो तो कहेगा मैं जैसे मर्जी चाहूंगा जीऊं। तो जिनके दिल में आखिरत की फिक्र होगी उन्हीं को फिर ये फिक्र होगी कि अल्लाह को राजी करना है, उन्हीं को ये फिक्र होगी कि किसी तरह मेरी बख्शी हो जाए। तो ये दलाल भाई ये इतनी दूर निकल गए हैं कि वो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, वो वाली बात भी इनके लिए खत्म हो गई क्योंकि ये इतनी दूर निकल गए शाम को भी वापस नहीं आएंगे। ये है सजा उन लोगों की जो नहीं ईमान रखते आखिरत में। अफलम यारो, पर अब अल्लाह ताला ने एक उनको लॉजिकल बात से समझाना चाहा है कि क्या ये देखते नहीं, ये आखिरत का इनकार करते हैं, क्या इनको नजर नहीं आता? इला मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, जो इनके आगे है और जो इनके पीछे है, अरे जमीन और आसमान में कितना कुछ है, मिन समाई वल अर्द, आसमान में से और जमीन में से यानी आगे पीछे इनके कितना कुछ है, अल्लाह की कितनी निशानियां बिखरी पड़ी हैं, क्या इनको देख के समझ नहीं आती, इनको अंदाजा नहीं होता? ये तो जैसे घिरे हुए हैं अल्लाह की निशानियों के अंदर। तो कभी इन्होंने सर उठा के देखा, नजर उठा के देखा कि जिस रब ने ये सब कुछ बनाया है वो क्या ऐसे ही हमें छोड़ देगा? उसने बेकार तो कोई चीज भी नहीं बनाई, तो ये क्या बेकार ही निजाम चल रहा है जिसमें कोई कुछ कर रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो किए चला जा रहा है? अब इनको कोई पूछे ही ना, इनको बस आजाद छोड़ा हुआ जो मर्जी करते रहे, ऐसे थोड़ी होगा। जिसने हर चीज को बामकसद बनाया, क्या उसने मेरा नहीं मकसद बनाया होगा? जिसने इस हर चीज को परफेक्शन पे बनाया है, वो हर चीज को जैसे उसको होना चाहिए वैसा बनाया हुआ, क्या वो ऐसा बेइंसाफी का काम करेगा कि इस तरह इन लोगों को छोड़ दे, वो मार के पास मट्टी हो जाए, एक खेल तमाशा था खत्म हो गया, वो किसी को भी ना उसका रिजल्ट मिले। तो तुम कहीं पे भी चले जाओ, जाहिर है चलते जाए ना जमीन खत्म होगी ना आसमान खत्म होगा, जिधर भी चले जाएंगे आपको जमीन और आसमान तो मिलेंगे ही ना, जहाज में भी चले जाएं आपको आसमान मिल रहा है, आपके नीचे जमीन नजर आ रही, कहीं भी आगे देखो पीछे देखो। आगे पीछे देखने का मतलब एक ये भी है कि आगे इंसान के क्या कायनात है सारी फैली हुई है, और पीछे इंसान के क्या तारीखी वाकियात है, इंसान के जो कौमों के वाकियात गुजरे, किसी से भी नहीं तुम्हें समझ आती। और वैसे भी लिटरली भी आगे पीछे देखने क्योंकि कहीं तुम्हें नहीं कोई कोई चीज देख के तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें नहीं पता चल रहा तुम अल्लाह के कब्जे में घिरे हुए हो हर तरफ से, चारों तरफ से उसके बनाए हुए आसमान और जमीन। और इन नशा नखसिफ बिहिमुल अर्द, अगर हम चाहें ना तो ये जो बातें ये कर रहे हैं कि हम नहीं ईमान रखते, हम नहीं ये करते, ये तो सारी ऐसी झूठी बातें हैं, और ऐसे हम धसा दें इनको जमीन के अंदर, जैसे कारून को अल्लाह ने धसाया था उसके मकान और दौलत और खजानों समेत धसा दिया था अल्लाह ताला। एक दफा जलजला भी आया था जापान में जिसमें कितने ही लोग जो थे वो जमीन में धंस गए थे। तो अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह की कुदरत है, आप इस पे भी कई दफा देख सकते हैं, कितने ही वो यूट्यूब पे ऐसी वो दिखाते हैं चीजें कि जमीन फट गई और गाड़ियां अंदर जा रही, और ये सच्ची वाकयात दिखाते हैं कहीं की वीडियोज बनाई हुई, और नुस्कत अलैहिम किसफ़ मिन अस्समाई, या अल्लाह चाहे तो गिरा दे, अल्लाह ताला फरमाते हम गिरा दे इन पर किसफ़न कुछ टुकड़े, मिन अस्समाई आसमान से, हम चाहे तो इनके ऊपर आसमान से टुकड़े गिरा दे। इसका मतलब आसमान ये कोई धुआं ही सिर्फ नहीं है, कोई चीज है आसमान। अब साइंस को नहीं अभी तक समझ आई, लेकिन अब चलो ये आसमान के अंदर हमें वैसे नहीं समझ आती, तो ये तो समझ आ गई भी है कि यहाँ पे कितनी रॉक्स मिट्योर्स कितनी कुछ चीजें खला के अंदर घूम रही हैं, वो कोई भी चीज नीचे आके गिर जाए जमीन पे तो क्या हाल हो, सूरज ही आके गिर जाए अंदर, कोई और प्लेनेट आके गिर जाए अंदर, क्या हाल होगा। जमीन सूरज तो नहीं गिर सकता जमीन में, जमीन ही कहीं सूरज के अंदर चली जाए तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत फाइन लाइन के ऊपर चल रहा है यूनिवर्स, सोचते नहीं हो ये बात। हाँ ऊपर की तरफ देखो, कोई ऊपर से जीत आ जाए, जमीन फट जाए, तुम्हें अंदर ले जाए, ये बात तुम्हें समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला इतनी पावर वाला है, वो क्या कयामत ही नहीं बर्पा कर सकता। सिर्फ यही उसके लिए मुश्किल है क्या। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्ली अब्दिन मुनीब, ये इसके अंदर निशानी है हर उसके लिए जो रुजू करने वाला है, जो अल्लाह की तरफ पलटने वाला है, जो अपने आगे पीछे अल्लाह की बेशुमार निशानियां देखता है ना, समझ जाता है। वो तो कभी झुटला ही नहीं सकता क़यामत को। रुजू करने वाले हर बंदे के लिए, यानी बार बार जो लौटने वाला है अल्लाह की तरफ, जो बार बार आता है। देखें आप मुनीब तभी बन सकते हैं जब आप इस कुरान के साथ जुड़े रहें, तभी आप बार बार लौटते हैं, बार बार लौटते हैं। आप इसकी रस्सी छोड़ देते हैं ना, इस रस्सी को, अल्लाह की रस्सी है ये, वाकासी मुबिहबिल्लाही जमीयन, तुम पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सबके साथ मजबूती के साथ। तो जब अल्लाह की इस रस्सी को आप छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, मुनीब नहीं आप कम अज कम रहते, बार बार लौटना नहीं इंसान का फिर होता, भूल ही जाता है, बातें भूलने लगती हैं। ये जिक्र है, ये याद दिहानी है, ये आपको रिमाइंडर है आपके लिए, आपको रिमाइंड कराएगा बार बार। फिर आप पलट के आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पलट के आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर ये है, ये होती है इनाबत, रजू करना, बार बार लौटना। और इसी तरह आप अल्लाह की निशानियों पर गौर कर करके भी उसकी तरफ पलट सकते हैं। अब आगे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला के वो कैसे शुक्र गुजार बंदे थे। देखिए ये ना शुक्री है, जब इंसान आखरत को झुटलाता है ना, तो असल में वो सिर्फ आखरत को झुटला नहीं रहा होता, वो अल्लाह ताला के ऊपर एतराज करता है कि वो उसको कादिर नहीं है वो इंसान को दोबारा जिंदा करने का, क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना मैं उठाऊंगा, वो कहता नहीं उठाएगा, कैसे उठा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, अल्लाह की कुदरत को, उसकी पावर को। कितनी बड़ी नाशुक्री की बात है, जिस अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया तुम उसी को क्वेश्चन कर रहे, उसी की पावर्स को सोच रहे हो कि इसने कैसे, तुम्हें कैसे बनाया उसने, खुद नहीं सोचते अपने आप को कि मैं कैसे बनाऊं जो मुझे एक हकीर पानी के कतरे से इंसान बना के खड़ा कर सकता है, वो दोबारा भी मुझे उठा सकता है जरों से। तो ये सब तरीन नाशुक्री की बात है कि इंसान ये कहे कि जो है अल्लाह नहीं खड़ा कर सकता, या वो नहीं उठाएगा या नहीं उठा सकता हो। अब ये देखें, दो लोग दुनिया में, दो बादशाह, मोमिन बादशाह गुजरे जिनकी बहुत जबरदस्त सल्तनत थी, और दो बादशाह काफिर बादशाह गुजरे जिनकी भी बहुत जबरदस्त सल्तनत थी। दो मोमिन बादशाह कौन से थे, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दो काफिर बादशाह कौन थे, फिरौन और नमरूद। इन चारों का जिक्र कुरान करीम में आता है, और अल्लाह ताला दिखाता है कि बादशाहत बुरी चीज नहीं है, असल बात यह कि इंसान फिर उस बादशाहत को लेकर क्या सुलेमान और दाऊद बनता है या फिरौन और नमरूद बन जाता है। तो जो हमने पहली स्टोरी देखनी है वो दाऊद अलैहिस्सलाम की देखते हैं, और हम पहले भी इनका जिक्र पढ़ चुके हैं, सूरह अंबिया में भी पढ़ चुके हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम सूरह नमल में बड़ा प्यारा उनका किस्सा भी देख चुके हैं। तो वलकद आता ही ना दाऊद अमिन्ना, हमने अलबत्ता तहकीक, हमने अता किया, हमने दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से क्या चीज, फाजल, फाजल अपनी तरफ से ज्यादती, खसूसी इनामो इकराम। यानी फजल क्या होता है कि इंसान की, ये नहीं कि वो हक है, अगर अल्लाह की तरफ से खसूसी इनायत होती है, अल्लाह ताला देता उसकी करम और शफकत होती है खसूसी तौर पे। तो अल्लाह ताला ने क्या फजल किया था दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, सबसे बड़ा फजल तो ये कि उनको नबुव्वत दी, फिर उनको इल्म और हिकमत दिया। सूरह बकरा में हम ये पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जब तालूत और जालूत की बात आई थी तो हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने इनको क्या क्या चीजें अता फरमाई, वहां पे भी ये जिक्र है। और फिर अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरत आवाज दी थी, बे इंतहा हसीन आवाज इनको अता फरमाई थी अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला ने इनको किताब भी दी थी, तो इतनी इनके ऊपर अल्लाह ताला की नवाजिशें थी। और अल्लाह ताला ने पहाड़ों को हुक्म दिया, या जिबालू अवी बी माहू, और तैर, ऐ पहाड़ो रजू करो इस साथ इसके, लौटाओ साथ इसके। यानी मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई एक कोई गाना गा रहा है या कोई तराना गा रहा है, तो उसके पीछे जो खड़े होते हैं लोग, वो उसके साथ एक ही लाइन को वो फिर बार बार दोहराते जाते हैं, फिर वो आगे पढ़ता है, फिर वो एक लाइन को बार बार दोहराते हैं, इस तरह से होता है कोरल से, क्या कहते हैं उसको, तो कोरस में, हाँ को पीछे पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिबाल को, पहाड़ों को हुक्म दिया कि आप सारे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज के पीछे इस तरह लौटाओ आवाज को, यानी उनके पीछे पीछे पढ़ो या उनके साथ साथ पढ़ो, उनके साथ आवाज को मिलाओ अपनी। और तैयर को भी हुक्म दिया, परिंदों को भी। अब यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिए कि वैसे तो सारी कायनात, ये सब चीजें चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमारा ईमान है कि ये सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे उस तस्बीह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक स्पेशल तस्बीह है जिसमें ये दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिल के हम्द के तराने पढ़ते थे, जो जबूर के थे, वो इतनी खूबसूरत आवाज में अल्लाह की हम्द के तराने पढ़ते कि ये पहाड़ और तहीर भी पढ़ते थे। अब बाज लोगों ने, जिन्होंने यानी कुरान को अपनी अकलों पे रख के फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है ना, फिर वो आगे से कहने लगे नहीं वो दरअसल में जो वो कहते हैं कि हम लोगों को क्या बताएं गैर मुस्लिमों को कि इनके कुरान में ये लिखा कि पहाड़ भी पढ़ते थे, तो ये तो बड़ी मतलब ऐसी बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि असल में वो एको साउंड आती थी ना, तो उसको कहा गया यहाँ पे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। एको साउंड में फिर क्या कमाल हुआ, अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि अल्लाह ने जिबाल को हुक्म दिया कि इनके साथ पढ़े, तो एको साउंड तो फिर मैं और आप भी जाके कहीं पहाड़ों में जाके कुछ ऊंचा ऊंचा बोलने लगे तो वो भी एको हो जाती, फिर इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या कमाल हो गया, उनका क्या फिर मौजजा हुआ। तो असल बात है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजजा अल्लाह ताला के हुक्म से ही पहाड़ पढ़ते थे, अल्लाह ने ये मौजजा दिया हुआ था कि वो उनके साथ पढ़ते थे और परिंदे भी पढ़ते थे। अब आप तो सोचें, कभी आपका दिल किया कि ऐसी क्या समा होगा, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि उनकी आवाज के बारे में ही आता है कि अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था अबू मूसा आशरी को कि इनको आले दाऊद के मजामीर में से एक मिजमार दी गई है, यानी मिजमार का मतलब क्या, खुश आवाजी जो है, यानी वो अबू मूसा आशरी जो थे वो इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुरान पढ़ने को दाऊद अलैहि सलाम के कुरान पढ़ने के साथ मिसाल दी कि इनको उनके मजामीर में से एक मिजमार दी गई है, एक मिजमार, इतना खूबसूरत, इतनी सुरीली उनकी आवाज थी। इससे पता चलता है कि देखें, किसी की खूबसूरत आवाज हो तो उसको कुरान के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि कुरान को खुशिलहानी से पढ़ने के लिए, कुरान को अपनी आवाज से उसको मुजयन करना चाहिए और ज्यादा खूबसूरती से पढ़ना, उसको शौक होना चाहिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक तो खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन आवाज, ऊपर से उनके साथ एक पहाड़ भी पढ़ रहे हैं और परिंदे भी हैं वो जो सब मिल के तस्बीह कर रहे हैं, तो वो क्या मजा होगा, क्या उसका, हम तो ये दुनिया के गाने सुन के झूमने लगते हैं, हालांकि ये तो शैतानी वो हैं, ये शैतानी मिजमार है, ये शैतानी आवाजें हैं। और बाज जगह पे ये भी लिखा है कि शैतानों ने भी जो है ना उन्हीं चीजों को देखकर फिर कुछ उल्टा सीधा करके तो फिर ये बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जितनी खूबसूरत तरीन आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम की थी किसी और की भी नहीं ऐसे है उनकी, यानी स्पेशल, उनकी एक स्पेशलिटी बताई गई है कि उनका एक खास अल्लाह ताला का फजल था इस चीज में, आवाज में। आवाजें भी देखें इफेक्ट करती हैं, आवाजों का भी इम्पैक्ट होता है, आवाजें भी हर एक की मुख्तलिफ होती हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक इनायत होती है कि अल्लाह ताला किसी को खूबसूरत आवाज दे दे, तो आवाजें सब एक जैसी नहीं होती, आवाजें भी फर्क फर्क है, जैसे शक्लें फर्क फर्क है, सुभान अल्लाह आवाजें भी फर्क फर्क है। और दाऊद अलैहिस्सलाम का ये भी अल्लाह का फजल, ये नहीं कह सकते हम दाऊद अलैहिस्सलाम का कमाल था, ये उनका अपना नहीं कोई जाती कमाल, अल्लाह का फजल, ये सबसे पहले बताया गया, ये अल्लाह का फजल था تو جس کو بھی اگر دنیا میں علم ملتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہم نے پیچھے پڑھا وہ تو علم دیے گئے علم, تو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے. تو جس کو بھی علم مل جائے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور عاجزی کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علم دیا. کسی کو خوبصورت آواز ملی ہے اور وہ اس آواز کو اللہ کی کلام کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہوتا ہے اس کے اوپر. آوازیں شاید کسی اور کی بھی خوبصورت ہوں, کوئی لوگ اپنی آوازوں کو کسی کی اچھی آواز سنتے کہتے ہیں بس اس کو گانا سکھا دو کیونکہ یہ آواز اس کی بڑی خوبصورت ہے, تم گایا کرو گانے, تم گانا گاؤ گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو یہ نہیں سوچتے کہ تم قرآن پڑھو گے تو کتنا اچھا لگے گا, اس آواز کو قرآن کے لیے کیوں نہیں لگاتے. تو آپ بھی کسی کو سنیں ایسا کسی کی خوبصورت آواز, یا آپ کی ہو اپنی بھی آواز کو لگائیں لیکن کسی کی بھی خوبصورت سنیں تو اس کو اس طرف انکریج کیا کریں کہ کیا بات ہو اگر تم قرآن کو اس پیاری آواز کے ساتھ پڑھ کے دکھاؤ. یہ بھی ایک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے کہ انکریجمنٹ کسی کو دینا, کیونکہ داؤد علیہ السلام کی خوبصورت ہی تو دیکھو وہ کیسے پڑھتے تھے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داؤد علیہ السلام کی آواز سنوائے, یہاں پہ ہم سنیں ان کے ترانے حمد کے جو اللہ کے کرتے تھے. تو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا تھا جیسے ہمارے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے, ہم روٹی کو دیکھیں جب جیسے چاہے توڑے فولڈ کریں اس طرح کریں, اس طرح سبحان اللہ اتنا سالڈ لوہا وہ ان کے ہاتھوں میں نرم ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا, ہم نے کر دیا. دیکھیں بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی جو چیزیں ملیں, جو کوئی خصوصیات ملی, ان کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہے کہ اللہ نے دی ہیں. تو ہم پھر کیوں ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اچھی شکل و صورت ہو یا ہمارے پاس کوئی ہنر ہو, کوئی بھی آپ چاہے وہ اس کا کہہ دیں, کوئی کوکنگ کا کہہ دیں, کوئی رائٹنگ کا کہہ دیں, کوئی پینٹنگ کا کہہ دیں, کسی قسم کا بھی آپ کے پاس ہنر ہے, تو اس کو اللہ کی طرف ہمیشہ نسبت کیا کریں کہ اللہ نے دیا ہے, میرا نہیں ہے کوئی کمال. اگر داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تو میرے اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہماری اپنے ہی کمالات ہیں؟ کبھی بھی اپنی طرف نہیں نسبت کرنی چاہیے ان چیزوں کے. پھر چونکہ لوہا ان کے لیے نرم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان اعمل صابغات, کہ بناؤ کشادہ زیرے. میں نے آپ کو بتایا نا زیرہ کا لفظ یہاں پہ محذوف ہے, مگر ایک مطلب بات ایک خود ہی سمجھنے کی ہے کہ انسان یہ بات کو خود ہی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا, اب آپ ان کے ذریعے اس طرح سے اس معجزے سے آپ زیرے بنائیں. اور یہ زیرے سب سے پہلے دنیا میں داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی. ان سے پہلے جنگوں میں زیرے یوز نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی زیروں کا, تو انہوں نے پہلے بنانی شروع کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا, ان کو سکھایا یہ ہنر کہ آپ زیرہ بنائے وقدر فی السرد, اور اندازے کے ساتھ حلقے رکھیں, یعنی حلقے جو ہیں وہ جو اس کے جو جیسے چین ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ سرکلز ہوتے ہیں, تو کس طرح سے آپ نے اس کے حلقے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے ہیں, کیسے بنانے ہیں اور ان کو کیسا ارینج کرنا ہے, کس طرح آپ نے پوری یعنی مناسب طریقے کے ساتھ سارے, نہ بہت پتلے ہوں نہ بہت موٹے ہوں نہ بہت لوز ہوں نہ بہت ٹائٹ ہوں کہ انسان کے لیے چلنا ہی مشکل ہو جائے. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وقدر فی السرد, صرف یہی بات کہہ دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ زیرے بناؤ. یہ کیوں کہا گیا کہ اندازے سے مناسب سے ہلکے رکھو, اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہر کام جو آپ کریں آسان طریقے کا کریں, یہ نہیں کہ سر سے اتارنے والا جو کام کریں سر سے اتار کے, کسی کو پانی بھی دینا ہے تو جیسے تیسے کا ادھر مارا, صفائی کرنی ہے تو جس طرح سر سے اتاری, نہیں, جو کام بھی آپ کے ذمے ڈالا جاتا ہے, جو کام بھی آپ کے کرنے کو کہا جاتا ہے, اس کو خوبی کے ساتھ کریں, خوبصورتی کے ساتھ کریں, ظاہری خوبصورتی بھی اور اچھے طریقے کے ساتھ, اس کو باطنی طور پہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایک پسندیدہ چیز ہے اسلام میں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ دین کی طرف آ گئے تو بس کپڑے پہنے, تو وہ بھی نہ کوئی ڈھنگ نہ کوئی کچھ, بس قمیض کوئی پہن لی شلوار کوئی, نہیں ہم دین کے بہت آ گئے تو اب ہمیں دنیا سے کچھ نہیں ہے, तो बटा कोई सर पे रख लिया, कोई किसी तरह कर दिया, जैसे तैसे बस जिंदगी गुजार रहे हैं, ना कोई काम करते हुए कोई यानी उसका तरीका देखा, ना कोई सलीका देखा, बस बेढंगे काम किए चले जा रहे हैं। ये नहीं है इस्लाम कहता, आसान तरीके के साथ करो, जो भी करो अच्छे तरीके के साथ करो। जैसे यहाँ पे उनको कहते हैं मुनासिब मुनासिब रख के आपने हल्के करना, वरना यहाँ पे रहे ये बात कहने की क्या जरूरत है, वो कैसे भी रखते हल्के, जैसे मर्जी जीने बना के तो फेंकते जाते, जीरा ही बनानी है ना, और उनसे पहले कौन सा किसी ने बनाई थी जो उनके साथ उनका कोई कॉम्पिटिशन था। फिर भी बताया गया अच्छी तरह से आपने करने, ये बात बहुत हमें इस चीज की यहाँ पे लेसन मिलता है इस चीज का। और ये भी हमें पता चलता है कि देखिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अपने हाथ से बनाए वो जीरे बनाए, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अपने हाथ से काम करना कोई बुरा नहीं है, ये भी अंबिया की सुन्नत है। हमारे पास अगर चार पैसे ज्यादा आ जाते ना, किसी को कोई मालदार हो जाता है तो वो अब अपने हाथ से काम करने को में हकारत महसूस करता कि मैं करूं काम, मैं किचन में काम करूं, मैं बाथरूम साफ करूं, मैं घर की सफाई करूं, ये कैसे हो सकता है, यानी मैं इतनी बड़ी चीज बन गई हूं, मैं ये करूं। हालांकि हम देखते हैं कि ये नबियों का तरीका रहा है कि वो किसी काम को हकीर नहीं समझते थे, वो हर काम को अपने हाथ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देख लें, आप अपने हाथ से ही अपने जूता भी घाट लेते थे, दूध भी निकाल लेते थे जानवर का, अपने कपड़े भी सी लेते थे, उन्होंने तो कभी नहीं ऐसे कहा। और ना ही हम किसी पेशे को प्रोफेशन को ऐसा समझ सकते हैं कि जो ये तो बड़ा हकीर प्रोफेशन है, जैसे यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम किसका काम कर रहे हैं, अगर ऐसे आप देखा जाए तो किस चीज का काम कर रहे हैं, लोहार का काम, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं शायद, लोहे का काम करने वाले को जो भी कहते हैं, तो यानी लोहे का काम करने वाले, तो उर्दू में हम तो लोहार कहते हैं, तो हम तो बहुत ही हकीर समझे, लो जी लोहार है ये, लो जी माली है ये, लो जी ये तो दर्जी है, ये तो नाई है, हमने इस तरह से कह के एक बरादरियां बना ली, वो तो नाई होते हैं, वो तो ये होते हैं, ये कोई इससे कोई किसी का कबीला या बरादरी नहीं बन जाती कि ये तो वो होते हैं क्योंकि वो इस प्रोफेशन को करता है इसे, तो फिर क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह हम अंबिया को कहेंगे वो तो चरवाहे होते थे, ये कहेंगे, तो ये प्रोफेशन को कभी भी उसमें समझना कि ये नीचा है, ये हकीर है, कोई कोई मोची है, ये नाई है, ये सही नहीं है। इसलिए कि देखें मशहूर फकीह है अहमद बिन उमर खसाफ, तो वो जूती मरम्मत करते थे, यानी एक तरह से समझ लें आप मोची थे, ठीक है, और अहमद बिन अली राजी जो थे वो चूने का काम करते थे, तो इस तरह से आप देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं, इमाम गजाली जो हैं वो कपड़ा बुनते थे, गजाल कहते हैं ना जुलाहे को, इसी तरह और भी कई हैं जिनको आप अगर देखें तो वो कोई लोहार का काम करता था, कोई चटाइयां बनाते थे, कोई कुछ काम इस तरह से करते थे, तो आजकल क्या हालात है कि वो प्रोफेशन जिसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं उनको बस बहुत इज्जत वाला प्रोफेशन समझा जाता है, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, चाहे वो हराम खाएं, सूद खाएं, कुछ भी करें, और एक अगर कोई बेचारा कोई मोची है या कोई अपनी यानी मेहनत मजदूरी करके कोई सड़क बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई गाड़ी कोई चलाता है, टैक्सी चलाता है, कोई कोई उसके अंदर हम आर समझने लगते हैं, हाय ये क्या, ये तो हमारी नाक काट गई, अल्लाह के नजदीक इस चीज से कोई मुअज्जज नहीं होता, कोई रिस्क हलाल खाता है वो मुअज्जज है, बस दाऊद अलैहिस्सलाम भी बस देख लें लोहार थे, अपनी मेहनत की कमाई से खाते थे, अब्दुल्लाम ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम इतने बड़े हालात थे कि बादशाह थे, सिर्फ अपने हाथ की कमाई से खाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स ने अपने हाथ की कमाई से बेहतर खाना नहीं खाया, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से ही खाया करते थे। तो ये इस बात की वजह से किसी को हकीर जानना, उनसे मिलना जुलना नहीं, क्योंकि ये इनका पेशा जरा हमें लगता है कि सोसाइटी में कम है, और फलाने का पेशा ज्यादा बड़ा है इसलिए उसको सलामे भी करो, उसके घर भी जाओ, उसके नीचे नीचे लग के रहते हैं क्योंकि उनका पेशा जो बहुत बड़ा, तो पेशे को सलाम है आजकल, और वो जिसका पेशा हमें नीचा लगता है उसके साथ हम बात करना नहीं पसंद करते, उसको अपने साथ मिलना जुलना नहीं पसंद करते, ये कहां के फिर अंबिया के तो पेशे देख के तो हमारे जैसे लोग तो उनके पास कभी भी ना बैठते, वहां पे भी आप ऐसे ही अमीरों को ढूंढते, फिर सरदारों को ढूंढते, उनकी वो तो सरदार सारे काफिर होते थे, पहले जमानों में, तो फिर हम किन के अंदर होते? अगर आज हमारे ये मयार हैं, तो सोचें कि उस जमाने में अगर हम पैदा हो जाते तो किन के साथ बैठने वाले होते, अगर आज हमारी ये जहनियत है।